તારીખ 7/3/1996 શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકના ચોથા અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 15.
મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ચોથા અધિકાર. કલ્પિત इस विषय पे इस प्रकरण में और भी चर्चा टोडल वाले साहब करते हैं. प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? जब आपने ये कहा कि दर्शनों के कारण से प्रयोजन भूत पर लक्ष्य रहता है, प्रयोजन भूत बात छूट जाती है, तो फिर ये जरूरी है कि प्रयोजन भूत कौन है, प्रयोजन भूत कौन है. उस प्रश्न का समाधान दिया है कि इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो. कोई भी जीव इस बात को समझ सकता है कि सभी को प्रयोजन सुख का है, सुख होने का है और दुख नहीं होने का है. किसी भी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है. कि किसी भी जीव को दूसरा तो कोई प्रयोजन नहीं है, ये आखिरी बात है. कुछ प्रवृत्ति करके नहीं करके अल्टीमेटली तो सुख दुख का ही तो सवाल है, और तो कोई सवाल नहीं. तथा दुख का न होना और सुख का होना एक ही बात है. सुख का होना कहो या दुख का नहीं होना कहो, वो तो अस्ति नास्ति से एक ही बात को दो पहलू से बताया. क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है. किसी तो कोई अवस्था होती नहीं, या तो दुख होता है या तो सुख होता है. दुख का अभाव वही सुख है. और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य सिद्धान करने से होती है. ऐसे प्रयोजन की सिद्धि, सुख दुख के प्रयोजन की सिद्धि जीव आदिक नव तत्व का सत्य सिद्धान करने से ही होती है. जैन दर्शन में नव तत्व का प्रतिपादन क्यों हुआ है? ये जीवादिक नव तत्वों के सिद्धान करने का जो प्रकरण यहाँ प्रतिपादन करते हैं, तो उस विषय में थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इन नव तत्वों का प्रतिपादन क्यों हुआ है. उसमें कौन सा तत्व हेय है और कौन सा तत्व उपादेय है? किस हेतु से दुख नहीं हुए और सुख हुए, इन्हीं प्रयोजन को लक्ष्य में रख करके ये नव तत्व का प्रतिपादन जैनागम में हुआ है. कौन से तत्व ग्रहण करने से और कौन से तत्व त्याग करने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि माने सुख प्राप्ति हुए और दुख का नाश हुए, वो कैसे सो कहते हैं. प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए. मैं जीव, मेरा स्वरूप कैसा है और मेरे से भिन्न दूसरे अजीव कौन है. मैं जीव हूं तो मेरे सिवा मेरे लिए सब और जीव है, मेरा जीव नहीं है. तो मैं और पर मैंने दूसरा, दोनों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए. यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें। तो अपने को ही नहीं पहचानते हैं तो अपने में सुख दुख का कारण क्या है वो भी कैसे मालूम पड़ेगा, दुख कैसे दूर होगा। अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो। क्या हुआ है कि अनादि से अपने को और पर को एक जान करके जीव अपना दुख दूर करने के लिए उपचार पर में करता है, प्रयास पर में करता है, तो अपने दुख कैसे दूर होगा। जैसे दाग तो हमारे चेहरे पे है और कांच में दर्पण में देखा और घिसने लगा दर्पण को क्योंकि वहां दाग देखा। दाग कहां देखा, अपना चेहरा तो दिखाई नहीं देता, दर्पण में चेहरा देखा तो दाग देखा कि चेहरे पे दाग है। चेहरे को घिसने के बजाय दर्पण घिसने लग गया तो चेहरे का दाग कैसे दूर होगा, कभी दूर होगा, कितना घिसने से दूर होगा, तो होगा नहीं। ऐसे अभी तक जगत में हम और सभी जीव जिसको आपा पर का भेद विज्ञान नहीं है तो अपना सुख दुख पर से मानते हैं, पर के कारण से दुख और पर के कारण से सुख, सबसे बड़ी भूल यही है। तुम ऐसा करते हो इसलिए मुझे दुख होता है, दुख होने का कारण क्या है कि तुम ऐसा करते हो इसलिए दुख होता है, बात सरासर गलत है। वो तो बात ऐसी होगी कि दर्पण में दाग दिखता है तो दर्पण को घिसो दाग जाएगा, कि दाग कभी जाने वाला है नहीं, ऐसे मानने वाले का दुख कभी मिटने वाला है नहीं, वो हमेशा हमेशा किसी न किसी पर के कारण से दुखी होता ही रहेगा। एक कारण मिटेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा मिटेगा तो तीसरा खड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी आदत ही बनी रही है मेरा दुख दूसरे के कारण से है और सुख भी वो पर कारण से मानेगा तो सुखी होने के लिए भी पर का उपचार करेगा, न कभी दुख जाएगा न कभी सुख मिलेगा। आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो कि कभी होने वाला नहीं है। अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है, पर चीज पर पदार्थ दूसरा जीव हो या दूसरा अजीव हो, परमाणु हो या जीव हो, उसमें अहंकार ममकार करता है कि ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे स्वामी है, ये मेरा घर है, ये मेरी चीज है, अपनापन करता है, अपनापने का अधिकार रख करके वो दुख को ही प्राप्त करता है, उससे ही दुखी होता है और कोई दुखी होने का कारण नहीं है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, आपा पर का भिन्नत्व का ज्ञान होने ही दुख दूर होता है। दुख की जड़ भी यहां है कि अपने को और पर को एक माना यानी संबंध वाला माना है। कोई ये कहेंगे कि एक तो हम नहीं मानते लेकिन संबंध है तो संबंध को तो मानना पड़े ना, ये बात एक ही होगी, एक मानो या संबंध वाला मानो, दोनों बात एक ही है, दो बात नहीं रहती उसमें। तो आपा पर का भिन्नत्व का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव जीव का ज्ञान होने पर ही होता है। मैं जीव हूं और मेरे लिए मेरे स्वरूप को छोड़कर सब अजीव ही अजीव है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि जो भी भिन्न पदार्थ है वो सब अजीव है। थोड़ा प्रैक्टिकल साइड से विचार करें कि संसार में ऐसे जीवन जी सकते हैं क्या? घर में रहते हैं, गृहस्थी है, परिवार के साथ रहते हैं। अब हम हमारे किसी से लेना देना नहीं है, हम कैसे जीवन जिए, संभव है क्या? ज्ञानियों ने तो ऐसे ही जीवन जिया है, क्यों रहते हुए भी सबसे अलिप्त रहते हैं। समाज के बीच में रहते हैं तो समाज से, घर वालों के बीच में रहते हैं तो घर वालों से अलिप्त रहते हैं, शरीर के साथ रहते हैं तो शरीर से अलिप्त रहते हैं, पर वो सुखी हो गए। जिसको सुखी होना हो उनको तो जितना भी पर से लगाव रखेगा उतना ही दुखी होएगा। दुख की जड़ वहां है, जड़ काटो सुखी हो जाओगे। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपने और पर की भिन्नता भाषित हो, लक्षण से पहचान करने की बात आई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने स्वरूप की पहचान करने की बात जगह जगह कही है। लक्षणादि द्वारा जीव ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है, इसी मुद्दे पर तो सारे समय सार की रचना है। ज्ञान मात्र जीव बोला है, जिनको ज्ञान मात्र बोला, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो अजीव पदार्थ है। वो जीव जीव की पहचान तो अपने और पर की भिन्नता इससे भाषित होती है। जिससे क्या होता है कि दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना, मैंने भिन्न भिन्न जानना, जीव और अजीव को भिन्न भिन्न जानना, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जीव पदार्थों के अन्यथा सिद्धांत से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा सिद्धांत से दुख होता था, या अपनत्व करके दुख होता था, संबंध जोड़ करके दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से यानी भिन्नत्व का अनुभव होने से दुख दूर होता है, दुख मिटता है। जो भी सुखी हुए और इसी तरह से हुआ है, भिन्नत्व जान के सुखी हुए, और जहां तक संसार में जिनने भिन्नत्व नहीं जाना वहां तक वो दुखी होते रहे और होते रहेंगे। इसलिए जीव अजीव को जानना, जीव अजीव को जानना, मैंने भिन्न भिन्न जानना, तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है, और भी क्या है? हाँ, जीव का स्वरूप तो ज्ञानमयी ज्ञान स्वभाव जीव का स्वरूप है, रागादिक देहादिक और अन्य संयोग आदि कोई जीव का स्वरूप नहीं है। मैं जीव हूं तो मैं राग वाला भी नहीं और देह वाला भी नहीं। ज्ञान मई ज्ञान स्वभाव में जीव हूं, आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान में श्रद्धा में अनुभव पूर्वक लेना। देखो कैसे मेरा कैसा मेरा को सुख की प्राप्ति होती है, देखो कि कैसे मेरा को सुख की प्राप्ति होती है। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्व आदि का आश्रय है। मिथ्यात्व आदि में आश्रय लिया है, मिथ्यात्व आदि में मिथ्यात्व प्रमाण प्रमाण कषाय योग बंध हेतु आश्रय लिया है। तो दुख का कारण तो कर्म बंधन है और कर्म बंधन का कारण आश्रय है। बंध का कारण कौन है? आश्रय है जो मिथ्यात्वादिक है। मिथ्यात्व भी आश्रम है, कषाय भी आश्रम है, प्रमाद भी आश्रम है, ऐसे। तो मुख्य करके मिथ्यात्व और कषाय पर ध्यान देना है इस भूमिका में। आश्रम के पांच भेद में पहले दो है मूल नए बंध के कारण अपन बुद्धि पूर्वक समझ सकते हैं। तो बंधन से दुख होता है, बंधन से जीव पराधीन होता है और कोई जीव पराधीन रहना चाहता नहीं है। संसार में भी कहावत है कि पराधीनता जैसा कोई दुख नहीं है और स्वाधीनता जैसा कोई सुख नहीं। कोई पराधीन रहना चाहता है क्या? कोई किसी के अंदर में रहना चाहेगा? नहीं। हाँ, खुद दूसरे को पराधीन करे, लेकिन इसको पूछो कि तुम पराधीन रहना चाहते हो क्या? बोलेगा कि हमको तो नहीं रहना है। पराधीनता ये दुख को ये जीव को सहन होते ही नहीं है। दुख का कारण तो कर्म बंधन है, बंधन से पराधीनता आती है और उसका कारण मिथ्यात्वादि का आश्रय है। ऐसा बंधन क्यों हुआ? कि मिथ्यात्व कषाय प्रमाद आदि जो किया इन्हीं कारण से बंधन हुआ था। यदि इनको न पहचाने, इनको मैंने मिथ्यात्व कषाय आदि को और बंधन को न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने न पहचाने और दुख का कारण ऐसा नहीं पहचाने तो इनका अभाव कैसे करेंगे? तो उनका नाश करने का भी कोई उपाय नहीं होगा। जैसे हम मानते हैं कि अशाता विधि बीमारी आदि आई इसलिए हमें दुख पहुंचा, वो बात सही नहीं है। इसलिए हम उपाय भी ऐसा करें कि बीमारी कैसे मिटे, डॉक्टर को बुलाओ, दवाई ले लो, वो करो वो करो, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी दुख मिटता नहीं है। ये दुख थोड़ा दूर हुआ तो दूसरा चालू हुआ, दूसरा थोड़ा हटा तो तीसरा चालू हुआ। आधे आधे उपाधि से कभी दूर होता नहीं है, क्योंकि दुख मिटाने का उपाय वो पर में करता है, अपने में नहीं करके पर में कहता है। पर में सुधार करने से अपना दुख मिटेगा, ये मान्यता ही विपरीत है। ये विपरीत मान्यता को पकड़ करके जहां तक बैठेगा वहां तक दूर होने वाला दुख दूर होने वाला नहीं है। यदि इनको न पहचाना, इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव भी कैसे हो? और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं होगा? मिथ्यात्व कषाय करता रहेगा, नया कर्म बंधन होता रहेगा और दुखी भी होता रहेगा। ऐसे ही भी आएगा, कैसा आएगा? दुखी आएगा होगा, पर वो बंदर का इंद्र आता है और जीव उसमें और दुखी होता है। इसलिए दुख नहीं होता है, अथवा मिथ्या तो आदि भाव है सो दुख में है। हम और थोड़ा सूक्ष्म बात करते हैं कि जो भी मिथ्यात्मक कषाय आदि परिणाम होते हैं वो खुद तो दुख रूप है, दुखमय है। यदि उन्हें झोंका चोर नहीं जाने, इसका जैसा तात्विक स्वरूप है वैसा नहीं जाने, तो उनका अभाव नहीं करे, वो दुखदायक है ऐसा नहीं जाने तो उसका अभाव नहीं करे, तो दुखी नहीं रहने। इसलिए आश्रव को भी जानना, क्या कहें, जीव को जानना, जीव से भिन्न ऐसे अजीव को जानना, और दुख के कारण रूप आश्रव और बंध को भी जानना। तो पहले आश्रव लिया है एक तत्व के, आश्रव को जानना है, मिथ्यात्व कषाय प्रमाद आदि जो है वो आश्रव है उनको जानना। तारा दोष से तुझे बंधन है, और बंधन इसका फल दुख है। कषाय रस, हाँ कषाय रस है, वो कषाय की शक्ति है। क्या है, कषाय में कषाय रस है, वो कषाय की शक्ति है। और जो भी परिणाम में कषाय है उसमें जो तीव्रता गिननी चाहिए तो कषाय की गिननी चाहिए, वो सबसे ज्यादा नुकसानकारक है और दुखदायक है। इसलिए जितना कषाय रस तीव्र हो उतना ही दुख ज्यादा होगा। थोड़ा सूक्ष्म विषय है। तथा समस्त दुख का कारण कर्मबंध है, यदि उसे न जाने तो उससे मुक्तने का उपाय नहीं करे, आश्रम के बाद बंध लिया है तो उससे उसके निमित्त से दुखी हो, बंधन के निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को भी जानना, आश्रम को भी जानना और बंध को भी जानना। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है, नव तत्व की बात चल रही है ना, प्रयोजन भूत तत्व है। नौ जो है वो जीव को समझने के लिए प्रयोजन भूत है। आश्रव का अभाव करना सो संवर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे। संवर का स्वरूप क्या है वे नहीं जाने तो संवर को प्राप्त कैसे करेगा, यानी आश्रम का अभाव कैसे करेगा। तथा तो आश्रम ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। आश्रम से वर्तमान में भी दुख है और भविष्य में भी यही दुख का कारण है, इसलिए संवर को भी जानना चाहिए। आश्रव और बंध तत्व को छोड़ने योग्य जानना चाहिए और संवर को ग्रहण करने योग्य जानना चाहिए। जैसे जीव और अजीव को, जीव को ग्रहण करने योग्य जानना चाहिए और अजीव को ही रूप में त्याग करने योग्य रूप में जानना चाहिए। तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। अब समर के बाद निर्जरा की बात करते हैं कि कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना जिस अनुपात में, जिस अंश में, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम भी नहीं हो। तथा सर्वथा बंध में रहे जिससे दुखी होता है, इसलिए निर्जरा को भी जानना, वरना तो सर्वथा बंध ही बंध रहेगा। तथा सर्वथा कर्मबंध का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है, निरवशेष बंध का बिल्कुल कर्म का नाश होना उसी का नाम ही मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय भी नहीं करेगा तथा संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे वही सहन करना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष को जानना, इस प्रकार जीवादि सात तत्व को जानना हे उपाधि के रूप में जानना। सात तत्व में जीव, संवार, निद्रा और मोक्ष, ये चार तो उपाधि हैं। अजीव, आशव और बंध, ये तीन तो ये है। ऐसे दो खाते में खटा लेना, सात का विभाग दो कर देना, तीन हे करना, चार को उपादेय करना तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, क्या शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, सातों तत्वों को जानते हैं शास्त्र द्वारा, परंतु ऐसी ही है, ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो। जानना और जानना उस तरह से जानना कि उसकी प्रतीति आए उस तरह से जानना, तो पहले जानने की बात क्या, समझने की बात क्या। अब समझे तो समझ के साथ उसका विश्वास, उसकी प्रतीति आई कि नहीं आई। जैसे हमने ये सुना, वो 108 नंबर का पत्र लिया था ना, कि सुख अंतर में है, बाहर में ढूंढने से खोजने से मिलने वाला नहीं है। तो ये बात समझ में आई लेकिन विश्वास में आई क्या। समझ और विश्वास एक सा होना चाहिए, ज्ञान और श्रद्धा एक सा होना चाहिए। हम समझे, समझ में तो ये रखे कि जीव और अजीव भिन्न है और मान्यता में करे एकत्र, और उसी मान्यता अनुसार प्रवृत्ति करे, तो फिर उसे जानने से क्या फायदा हुआ। तो जानने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। सिर्फ जानना नहीं, जानने के साथ उसी में ही विश्वास करना और उसी श्रद्धा ज्ञान अनुसार प्रवृत्ति करना, तब ये सुख होगा। ऐसे ज्ञान, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान और श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आचरण, इस तरह से आत्मा के जो तीन मुख्य गुण हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इस तीन गुणों की प्रवृत्ति इस तरह होनी चाहिए। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। कैसे कथन कैसे कहा कि तुम दुख में तो खड़े हो, संसार में तो दुखी तो हो ही, पर दुख दूर हो चलता, हम जानते भी है और मानते भी है, लेकिन अंदर में से श्रद्धा ने पलटा खाया नहीं, तो ये जानना मानना बात कही रहती है और परिणाम दुख में होता है, वो कुछ और हो जाता है। दुख क्यों होता है? ये सात तत्वों का सच्चा ज्ञान और सच्चा श्रद्धान नहीं होने से ही दुख होता है, और उसी का दूसरा नाम अज्ञान और मिथ्यात्व है, उसी का ही दूसरा नाम अज्ञान और मिथ्यात्व है। उस अज्ञान और मिथ्यात्व से जीव वर्तमान में तो दुखी होता ही है, परंतु आगे जाकर के अनंत परिभ्रमण का कारण भी ये दोनों ही है और कुछ नहीं है। तो अभी का दुख तो जैसे कैसे तो सहन करेगा, लेकिन ये अनंत परिभ्रमण वाला दुख तो तुम सुन भी नहीं सकेगा, फिर भी भोगना पड़ेगा। सुनना भी कठिन है, ऐसे ऐसे दुख है, ये भोगना पड़ेगा तो क्या होगा तेरा, उसकी अगर चिंता होगी तो तुम सही रास्ते पे आएगा। इसका फल नरक निगोद है, इसका फल अनंत परिभ्रमण है, तुम सहन नहीं कर सकेगा। तो फिर उनको दुख से तो डरता है, तुमको बहुत दुख भोगना पड़ेगा तो डरता है दुख से, दुख से डर करके वो पाप से हटेगा। तो वो भाव से भाव को नहीं समझता है, उनको कर्मबंध की बात करना पड़ता है, तो बहुत बहुत बुरे कर्म बंधेंगे, बहुत खराब बंधन होगा, फिर भी नहीं समझता है तो उसका फल समझाना पड़ता है कि इसका फल ऐसा आएगा वैसा आएगा वैसा आएगा। इस तरह से समझाने के लिए विशेष बात करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि सामान्य से विशेष बलवान है, बलवान है मैंने बलवान असर पहुंचती है उसे। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता और सुख होता है। कैसा श्रद्धान करना? यथार्थ श्रद्धान करना। ये मुमुक्षु की भूमिका की बात है, मुमुक्षु की भूमिका में यथार्थता होनी चाहिए और यथार्थता आगे बढ़कर के सम्यक्ता को प्राप्त करते हैं। जी हाँ हाँ उसमें क्या है, सत्य श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान ऐसा प्रयोग करण मुझे इसी कारण से करते हैं कि जीव जानता है, बौद्धिक स्तर पर जानकारी करता है और कहने वाले में थोड़ा बहुत विश्वास है तो बौद्धिक स्तर पर सम्मत भी करता है। जब सम्मत करता है तो उनको लगता है कि मैं मानता हूं, मेरी मान्यता ऐसी ही है, ऐसा उनको लगता है। तो वहां कभी कभी क्या डिफरेंस रहता है भीतर में, क्या अंतर हो जाता है कि मैंने जाना भी सम्मत करने से माना भी, लेकिन सत्य श्रद्धान और यथार्थ श्रद्धान वो शब्द का प्रयोग क्या अभिप्राय है कि वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करने करके उसमें जोर करके अगर माता है, अपने खुद को स्वयं को इसमें मिलित करता है तभी तो यथार्थ होता है, वरना वो थर्ड पर्सन के लिए ये बात रह जाती है, जैसे कोई दूसरा दूसरे की बात करते हो। जैसे कि देखिए सीधी साधी बात इसी प्रकरण के अनुसार दृष्टांत रूप में लेते हैं कि इस प्रकार का सात तत्वों का नौ तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ तो मिथ्या श्रद्धा ज्ञान अनादि का जो है वो ही रहा और ये अनंत परिभ्रमण का कारण है कि नहीं है। जीव को संसार में अनंत दुख अनंत क्लेश अनंत जन्म मरण परिभ्रमण का कारण क्या है? मिथ्या तो और अज्ञान। तो हमको एक मरण की और एक रोग की जितनी चिंता होती है, अरे थोड़ी सी प्रतिकूलता की जितनी चिंता और दुख होता है, इतना भी अज्ञान और दुख का जो अनंत जन्म और अनंत दुख का कारण है, इसकी चिंता क्यों नहीं होती है? हमने बात तो ध्यान ली तो मिथ्या और अज्ञान से अनंत परिभ्रमण होगा, जाने भी और बहुत बुद्धि से हमने वो सम्मत भी किया। अगर यथार्थ जाने होती तो उसकी चिंता हुए बिना रहती नहीं, और जानने पर भी और सम्मत करने पर भी चिंता नहीं होती। इसका कारण यह है कि हमने यथार्थ रूप से नहीं जाना। तो पंडित जी साहब तो सत्य श्रद्धा और यथार्थ श्रद्धा की बात करते हैं, उसमें गहराई है कि हम जानते हैं, मानते हैं, दूसरे को समझाते हैं, इतना जानते मानते हैं, लेकिन अपने जात को उसमें सम्मिलित करते नहीं है। दूसरा दूसरे की बात करते हैं, ऐसा ले लेते हैं जानने मानने में, तो उसके असर हमें नहीं पहुंचते हैं। सत्यार्थ श्रद्धान होने से हे उपाधि रूप प्रवृत्ति परिणमन में हे बिना रहे नहीं, यानी जानना मानना के साथ उसका अमलीकरण, जिसको हम आचरण भी कह सकते हैं, ये हुए बिना रहने। आज देखिए हमारे बीच में जो एक समस्या है सबसे बड़ी, वो खड़ी हो गई है कि हम बहुत समय से, बहुत सालों से तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, उपदेश सुनते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, परिणमन क्यों नहीं हो रहा है, ये समस्या खड़ी हुई कि नहीं हुई। हाँ हैं, हाँ ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, ये मुद्दे का प्रश्न है कि जब हम इसके ज्ञान की प्रवृत्ति करते हैं, हाँ इसके लिए ये सारा शरीर लगाया, नाम कुछ भी दे, सत्संग कहे, शिविर कहे, बात तो शब्द से मारामारी नहीं है, जो है सो है, हम इकट्ठे होते हैं और हमारे विचारों के आदान प्रदान करते हैं कि हम कैसे हमारे आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, एक सामूहिक प्रयास है हमारा ये। तो जानते हैं फिर भी ऐसा क्यों होता है, श्रद्धान की पलटना क्यों नहीं होती, बहुत मुद्दे का प्रश्न है कि बहिर्लक्षी ज्ञान से जानते हैं, परलक्षी ज्ञान से जानते हैं, अपनी जात को सम्मिलित करे यानी स्वलक्षी ज्ञान हुए या आत्म कल्याण के लक्ष्य से ये जानना हुए, तो ये उपदेश अंदर में उतरे बिना रहेगा नहीं। परलक्षी ज्ञान श्रद्धान को पलटने में समर्थ नहीं होता, स्वलक्षी ज्ञान से ही मिथ्या श्रद्धा पलट करके सम्यक श्रद्धा कारण है इसका। इसलिए शास्त्रों में भी वो बात कही शास्त्रकारों ने कि 11 अंक तक तुम आगे बढ़ गए ऐसा ज्ञान प्राप्ति में, तो लेकिन यथार्थ श्रद्धा नहीं हुआ तो 11 अंग होने पर भी उसका कोई फायदा नहीं मिला, गुण स्थान पहले का पहला रहा यही कारण से, तो क्योंकि श्रद्धान पलटा नहीं, चतुर्थ गुण स्थान आया नहीं बिना श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान के बिना चतुर्थ गुण स्थान भी आया नहीं। तो ये परलक्ष्य ज्ञान से ऐसा होता है जी, स्वलक्ष्य ज्ञान का लक्षण ये है कि हम हमारे जात को उसमें शामिल करें, ये भवभ्रमण हमारा होएगा, ये बात अगर आती है तो उसकी चिंता हुए बिना नहीं दी, किसी कीमत पे भी हम उसको टालेंगे। क्या चाहे कितना भी दुख आप रो, आधे व्याधि उपाधि उपसर्ग परेशान आप रो, 128 में पढ़ा के नहीं पढ़ा सिंह जी के पत्र में, हमको ऐसे परिभ्रमण से छूटना ही है कि निर्धार आए बिना रहेगा नहीं, ये स्वलक्षी ज्ञान का लक्षण है कि किसी भी कीमत पे हमें छूटना है, इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि इससे बड़ा दुख, परिभ्रमण से बड़ा दुख कहीं होने वाला नहीं नहीं ये सब इसके नीचे वाला है, कुछ भी आप पढ़ो। ये निर्धार स्वलक्षी ज्ञान में ही स्वलक्षी समझ में ही होता है, और ऐसे हुए बिना आत्म कल्याण के मार्ग में पहला कदम भी होने वाला नहीं है। ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है, यहां से वास्तविक शुरुआत होती है। ऐसे वास्तविक शुरुआत हुए बिना हमने जो कुछ किया तो सब कल्पना ही कल्पना मान लेना, वास्तविकता उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसी बात है। इसी पंडित जी जहां जहां श्रद्धान की बात आती है, सत्य श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान कहेंगे, ये इसका कारण है। कह देना माना भी, लेकिन उदय आया तो जानना मानना रहेगा कहीं और उदय में प्रवृत्ति हो जाएगी कहीं और, ये बात हो जाएगी। हमने जाना स्वलक्षी ज्ञान करें, परलक्षी ज्ञान का अभाव करने का तरीका स्वलक्षी ज्ञान करना उतना ही है। तो हम अपने जात को सम्मिलित करें, ये मेरी बात चल रही है, किसी और की नहीं चल रही है। जैसे कि जीव और अजीव भिन्न है, इसमें कोई लंबी चौड़ी अक्ल की जरूरत नहीं है। क्यों कि अजीव परमाणु है, जड़ है जिसमें ज्ञान नहीं है, पर जीव है उसमें तो ज्ञान है। तो जीव और अजीव एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, वो समझने में कोई लंबी देर लगने वाली नहीं है। लेकिन यथार्थ समझ कब होती है कि जब शरीर में असाता हूं या बाहर में कोई ऐसा फेरफार हो संयोग में जड़ पदार्थ में जिससे हमें दुख होता हो, तब हम उसका भिन्न पड़ा जो श्रद्धान ज्ञान में है या नहीं है, उसकी उपस्थिति रहती है कि नहीं रहती है, कहां चला गया वो? जी और अजीव भिन्न है, वो हमारे समझ श्रद्धान ज्ञान कहां चला गया? अगर हमको अशांति हुई दुख हुआ तो कहां गई हमारी समझ? वो समझ थी ही नहीं। परलक्ष्य ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, और ऐसा समझ किया उसको श्रद्धान भी नहीं कहते। प्रकाशित होते हैं, लेकिन किस आत्मा की बात करते हो? उसमें होता है, लेकिन पर स्वरूप में भाषित होता है, पर इससे जीव दुखी होता है। प्रयोजन तो सुख दुख से है, प्रयोजन भाषने से नहीं है। क्या हमारा प्रयोजन तो हमारे सुख दुख से है, पर हमें दुख क्यों होता है कि पर भाष पर रूप में पर नहीं भाषित होता है? तब पर रूप में अगर पर भाषित हो जाए तो दुख नहीं होगा। तो स्वच्छता और निर्मलता यथार्थ कब? के पर रूप में भाषे और स्वे स्वरूप में भाषे। इसके लिए स्वलक्ष और परलक्ष की बातें शास्त्र में आई है, यही प्रयोजन से आई है, इसके पीछे प्रयोजन है। तो इस तरह से ये प्रयोजन बोध का प्रकरण चौथे अधिकार में चल रहा है। आगे का जो विषय है वो कल के स्वाध्याय में लेंगे।